और उसके बाद भी हम ये चाहते हैं कि इसको कैसा कर लें, बोलो, अरे बोलो, निचोड़ लें, एक मिनट निवड़ा नहीं बैठना चाहिए। अरे क्या हुआ, 500 रुपए शब्द पर 500 रुपए तुमने खरीद के रिटर्न ले लिया क्या? और हमारी हमारी मन ये कहता है ना, और शाम तक 500 रुपए में मैं लाया हूँ, तो ये कर नक्की करके रखता है, ये काम बुलाऊ तो ये बताने का, ये काम बुलाओ यार ये बताने का। बोले ऐसा होता है नहीं होता, हम 500 रुपए में लोगों के दुनिया के लोगों से ऐसे आशा रखते हैं। वो नौकर अच्छा बर्ताव से काम कर ले तो शाम को उसका सेठ 500 पर कुछ क्या करेगा, मोहब्बत से कुछ झुकता बोल देगा। और खुदा ना करे उसने कोई 19-20 रखी, कोई माथे का निकल गया तो उसको 500 तो देने पड़ेंगे मजबूरी में, और मन खट्टा करके देगा। बोलो सही है गलत? अरे भाई जरा हुआ तो कहो सही है गलत। ये इंसानों का जो निजाम है ऐसा ही निजाम अल्लाह का अपने बंदे के साथ है। अगर अल्लाह के बंदे इन मशगूलियतों में रहते हुए अल्लाह के साथ अल्लाह से मुताल्लिक लाखों पड़ती चीजें पूरी कर ले तो फिर अल्लाह का गैबी निजाम के साथ हो जाता है, अल्लाह की जमीन पर वो फरमाबरदारों में शुमार हो जाता है, फिर अल्लाह पाक की मदद इसके साथ हो जाती है। और अल्लाह की मदद अगर इनके साथ हो गई तो फिर ये जो जिन कामों में होगा उसमें भी अल्लाह की मदद होगी, उसकी तिजारत में अल्लाह की मदद, खेतियों में अल्लाह की मदद, उसकी मजदूरियों में अल्लाह की, सारी निजाम में अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे अल्लाह पाक इस निजाम में बरकत देंगे। जमात में जाते हैं ना तो शुरू में छोकरे नवे नवे होते हैं तो कहते हैं अमीर साहब हारून रशीद के बेटे का वाकया सुनाओ, ऐसा कहते नहीं कहते? अरे बोलो भाई ऐसा कहते नहीं कहते? आप में से किसने किसने कहा था अमीर साहब से जरा बताओ, जरा हाल मुझे करो, देखो माशाल्लाह हारून रशीद के बेटे के वाकये में क्या है, तो बादशाह का बेटा है, बादशाह का बेटा था और अपने बस नाराज होकर चला गया जंगल में और मजदूरी करने लगा, गाड़ी मिट्टी का काम करता था। तो जिसने सनीचर में एक दिन काम कर पाया था, सनीचर में एक दिन, लेकिन एक आदमी कितने आदमियों का काम करता था, अरे जरा जोर से बोलो 10। तो वो जिसने काम पर मजदूरी में ले गया तो उसको हैरत हुई, एक आदमी ने 10 आदमी जैसे कैसे काम किया। तो एक अठवाड़े तक उसने दूसरे से काम नहीं करवाया, दूसरे अठवाड़े में छुप छुप कर देखा वो कैसे काम होता है एक आदमी से 10 आदमी होता। तो उसने क्या देखा था, क्या देखा था, ये घड़ा डाल देता और ईंटें खुद ब खुद जम जाती है। तो एक ये क्या हुआ, ये कुछ नहीं, ये अल्लाह हुआ। इसमें कौन हो रहा है बोलो, इसमें अल्लाह है, इसमें अल्लाह हो गया कि मजदूर की मजदूरी में अल्लाह साथ हो जाएंगे और ताजिरों की तिजारत में अल्लाह साथ हो जाएंगे। हाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहने लगे वो हिजरत करके जब मक्के से मदीना आए तो फकीर बिल्कुल छोड़कर आए, सब चीजें कोई साथ नहीं ला सके। तो मदीने में आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हजरत साद का भाई बनाया, एक महाजरी एक अंसारी, दो को भाई बनाए। तो दो भाई हो गए तो उनको उनका भाई बनाया ना, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे माल में से आधा माल ले लो और मेरी दो बीवियां हैं, भाई थोड़ा सा शुरू करो फिर भी बहुत मुश्किल, मेरी दो बीवियां हैं उसमें से एक बीवी जो तुम्हें पसंद आए उसको मैं तलाक दूं, वो इज्जत गुजार ले उससे तुम निकाह कर लेना। ये सब बातें हो गई, उन्होंने कहा मुझे तो ये भी नहीं लेना ये भी नहीं लेना, मान लेना ही ना बीवी। फिर तो मुझे बाजार का रास्ता देखा तो बाजार दिखा दिया, तो कहने लगे मैंने घी में पनीर उधार लिया, कैसे लिया, वो एक जगह से लिया दूसरी जगह बेचा, इस तरह लेता रहा बेचता रहा, शाम को थोड़ा सा बचा, फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन इस तरह व्यापार करता गया, अल्लाह ने वो व्यापार में इतनी बरकत दी इतनी बरकत दी। वो कहते हैं मैं माटी में भी हाथ डालता था तो सोना बन जाती थी, क्या बन जाती थी, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी औलादों में माल तकसीम करने के लिए कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी कौड़ी, उससे सोने को तोड़ा, रिवायत में आता है कितनी कुल्हाड़ियां टूट गई, ये कैसे हो गया, ये तो सब छोड़ छाड़ कर आए थे, ये अल्लाह का निजाम था, अल्लाह उनके साथ हो गया। एहतमाम लोगों का ऐसा उन पर बैठा ऐसा बैठा, उनके वाकया है तो सारों में लिखे हैं। एक 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 आदमी है माल बेचने के लिए मदीना में, तो सब लोग कान का ही लगे हुए थे मस्जिद के दरवाजों में थे, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास आकर लोगों को पूछा कि हमें माल बेचने का है, तो अब्दुर्रहमान को कोई जानते हो, तो किसी ने कहा क्यों, तो हमने सुना को इसको ले लेंगे तो हम भी लेने को तैयार हैं, हमको दे दो, कहना तुमको नहीं देना, किसको दोगे, अब्दुर्रहमान को ही दोगे, तो उन्होंने वो माल दिया और अब्दुर्रहमान को इंतजार में खड़े रहे। माल तो तुम्ही को बेचना है माल तो उन्होंने कहा मेरे पास सभी कोई पैसे वैसे नहीं मैं मस्जिद में उनका उधार ले लिया और वो इससे चले गए। जब वापस आए तो एक आदमी आया ये माल बेचोगे तो ब्रह्मान कहा बेचेंगे तो इसलिए करते हुए जाते हुए खरीदा वापसी में बेचा नफा जो बचा वो जेब में रखा और मुंडी उसके तो दिख जाए छुट्टी सलाम अलैकुम। क्या हो रहा है पेशाब करते करते इस्तिंजा करते करते धंधा हो रहा है और हमारा धंधा करते करते इस्तिंजा हो जाता है। हाँ धंधा करते करते हम सब तो इस्तिंजा हो गए मालदार तो हुए नहीं कर्जदार सब हुए बैठे हैं और जितना बड़ा मालदार इतना बड़ा कर्जदार वो तो लोग दिखाते नहीं है बड़े बड़े बंगले बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़ी गाड़ी पर तमाचे मारकर लाल कर देंगे हम तो लाल बड़ी गए लाल सोजे हुए हैं सब सोजे चढ़े हुए हैं पैर इतने जाड़े जाड़े हो गए हैं और कितना हेल्थी आदमी है माशाल्लाह कितना जाड़ा इसका पैर। अरे भाई सोजे चढ़े हैं सोजे क्या चढ़े हैं बोलो सोजे चढ़े ले हैं दुख अंदर का कह नहीं सकते छोकरों का दुख कारखानों का दुख पता नहीं कैसे कैसे दुख है लेकिन उन दुखों को आदमी बयान नहीं कर सकता खाली नक्शों को देखता है। एक शायर कहता है नक्शों को न जांचो तुम नक्शों को नक्शों की कोई गुणाकर भागाकर ना करो नक्शों को न जांचो तुम लोगों से मिल के देखो लोगों से मिल के देखो क्या चीज जी रही है क्या चीज मर रही है क्या हो रहा है वो तो लोगों से मिल के देखो। जब लोगों से मिलने जाते हैं तब पता चलता है। हम लोग रियूनियन में थे फ्रांस कॉलोनी का एक मुल्क है तो इस्तेमाल करने गए थे तो वहाँ एक आदमी का हमारे डॉक्टर साहब का पैर फ्रैक्चर हो गया था तो हम एक डॉक्टर साहब के पास गए वो यूरो चलते हैं तो इलाज हो गया उसके बाद पैसे देने लगे तो कहने लगे मेरे लिए दुआ कर दो दुआ। वो बहुत बड़ा डॉक्टर था तो उसको पूछे तो तेरे लिए क्या दुआ करे इतनी बड़ी तेरी कोठी गाड़ियाँ और ये कहने लगा ये मेरी घर में मेरी लड़की बैठी है ना वो मुझसे कहती है कि इस घर में से तुम चले जाओ अब तो इस घर में मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। लो जी छोटी बाबा को छोकरी कह रही है किसको कहने जाएंगे कहेंगे तो इज्जत जाएगी कहेंगे तो बोलो इज्जत जाएंगी नहीं कहेंगे तो घुट घुट कर मर जाना है। ये तो जब लोगों से घर घर के मुलाकातों में जाते हैं तब पता चलते हैं लोगों के दुख बाहर आते हैं। हाँ एक जगह मुलाकातों में गए एक मुल्क में तो वहाँ वो मुलाकात वाले छुट्टी नहीं दे रहा था अरे भाई जाना है अभी डेढ़ घंटा बिठाया कितनी घंटा बोलो अरे भाई कहीं को बिठाया मेरे घर बात की थी मेरे घर में मेरी बेटी का दोस्त आया हुआ था मेरी बेटी हमारी शर्म तो नहीं करती वो यही बुराई कर देती तो हमने तुमको इसलिए बैठाया तुम्हारी शर्म में कम से कम वो ऐसी हरकत घर में तो ना करे इसलिए इतनी देर तुमको बिठा रखा था। अब किसको कहने जाएंगे घरों में आग लगी हुई आग ये जिंदगी को मसाइल भर गए जिंदगी के मसाइल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो ये बात लोगों से कही कई लोगों अपने मामले को अपने अल्लाह के साथ ठीक कर लो अल्लाह तुम्हारा और पब्लिक के दरमियान के मामले को ठीक कर देंगे। मन असलह मा बैनहू व बैन अल्लाह असलह अल्लाह मा बैनहू व बैन खल्क़िही औ बैन नस ये जो अपने मामले को अपने अल्लाह के साथ ठीक करेगा अल्लाह उसके और उसके पब्लिक के दरमियान के मामले को ठीक कर देगा। दुश्मनी मोहब्बत अल्लाह लाते हैं औलादों में फरमाबरदारी अल्लाह भरेंगे कारोबार में बरकत अल्लाह भरेंगे मजदूरियों में ताउन अल्लाह के शक्लों में अल्लाह चलाएंगे। फिर राजा भी कोई बन जाएगा राजा तो राजपाट में भी अल्लाह खैर डाल देंगे। साहबा फरमाते हैं कि हमने हमारे राजपाट के जमाने में हर दो जुमा के दो एक जुमा पड़ी दूसरे जुमा के बीच में एक मुल्क हम फतह कर लेते थे। कितना फतह कर लेते थे हम तो छोकरा भी फतह नहीं कर पाते बैड़ी को भी फतह नहीं कर पाते। वो क्या कहते हैं हम दो जुमा के बीच में क्या फतह कर लेते थे बोलो एक मुल्क। हजरत उमर के जमाने में इस्लामी रियासत तीन बर्रे आजमों पर थी तीन खंड पर थी कितने खंड पर थी बोलो तीन खंड पर थी पता नहीं कहां से शुरू होती थी और कहां पूरी होती थी तीन बर्रे आजमों तक इस्लामी हुकूमत कितनी बड़ी अल्लाह ने जो राजपाट में बैठा था राजपाट वाले को राजपाट में बरकत दी जो व्यापार में बैठा अल्लाह ने व्यापार में अल्लाह का साथ हो गया जो मजूरी में गया मजूरी में अल्लाह का साथ हो गया। अगर शेख ने फजाइल सरकार में लिखा अल्लाह फरमाते हैं मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करें उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलें उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखें। क्या मतलब इसका अल्लाह की मदद और नुसरत उन दोनों के साथ शामिल हाल हो जाती है। ये इज्तिमा से ये बात कही जा रही है तो भाई भाई दोस्तों बुजुर्गो इसको गलीब ये जो यहाँ दीन की बातें हो रही है यूं गुणा कर ना करें ये तो मरने के बाद दीन काम आएगा ऐसा लोग समझते हैं। क्या समझते हैं बोलो, ये दीन की बातें जितनी हो रही है ये कब काम आएगी कहीं कब्र में मरने के बाद जन्नत में ले जाने के लिए? भाई वो तो बाद का मरहला है, वो तो बाद का मरहला है। जिस दीनदारी से और जिस इताअत और फरमाबरदारी से अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत देने वाला है, इतनी बड़ी जन्नत और जन्नत की एक एक चीज इतनी कीमती, जब अल्लाह इतनी कीमती देने वाला है ये दुनिया कौन सी हैसियत रखती है? दुनिया की हैसियत तो अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। किताबों में आता है कि अगर अल्लाह के वहां इस दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह बेईमानों को एक घूंट पानी नहीं देते, क्योंकि कीमती नहीं इसलिए सबको दे रहा है। तो जब ऐसे बेकीमत दुनिया अल्लाह इतनी कीमती जन्नत अल्लाह ने देने का वादा किया तो बेकीमत दुनिया एक अलग नहीं बनाएंगे? कहते अल्लाह ये बेकीमत दुनिया बना देंगे। इसलिए ये यहाँ बुलाकर एक बात कही जाती है, हम ये गुणा करना करें। ये जो तबलीग वाले बातें करते हैं और बात समझाते हैं ये तो सब मरने के बाद आएगा काम। हाँ, ये झाड़ उगाया है फल के लिए, उसका छाया यहाँ भी मिलेगा, फल तो मिलेंगे ही लेकिन उसका छाया पहले आएगा। जिस अच्छी जिंदगी पर अल्लाह पाक ये सब चीजें देने वाले हैं उसके असरात इस दुनियावी जिंदगी में भी पड़ेंगे। इसीलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि आदमी अल्लाह के रास्ते में जाकर इस यकीन को पहले बनाए। अभी तो ये यकीन हमारा नहीं बना, हमारा यकीन ये यूं कर देंगे तो यूं हो जाएगा और यूं कर लेंगे तो यूं हो जाएगा। यूं करने वालों ने भी करके देख लिया और यूं करने वालों ने भी देख लिया सब। दुनिया में कौन कौन सी तजर्बा नहीं कर रहा है, सारे तजर्बे सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप बताओ कि पहले जमाने में जो कारोबार की शक्लें थी, इस जमाने में कारोबार के ऑप्शन शक्लें बढ़ी या कम हुई? अरे भाई जरा जोर से बोलो, बढ़ी। धंधे के स्कोप बढ़े या कम हुए? बढ़े। अच्छा, तो इसमें जब बढ़े तो खुशहाली ईमानदारी ज्यादा होनी चाहिए या कर्जदारी ज्यादा होनी चाहिए? अरे बोलो भाई। अच्छा भाई बताओ, पहले के मुकाबले में कर्जदारी ज्यादा है या ईमानदारी ज्यादा है? जरा जोर से बोलो। तो ये गुणाकर भगाकर समझ में नहीं आया। धंधे के ऑप्शन बढ़ गए, धंधे करने वाले बढ़ गए और कर्जदारी उसके मुकाबले में और बढ़ गई, ये कैसे हो गया? अच्छा दूसरी बात बताओ कि पहले घर में कितने लोग धंधा करते थे? ये कहते हैं कि एक धंधा करता था 10 खाते थे, अब कितना धंधा करते हैं? ये कहते हैं 5 करते हैं, ये कहते हैं 100 धंधा करते हैं। मर्द भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं, बहुएं भी करते हैं, बेटियां भी करती है। अरे बोलो सही है गलत? ये सारे के सारे कर रहे हैं। अच्छा सब एक साथ धंधा करते हैं तो आवक बढ़नी चाहिए या कर्जा बढ़ना चाहिए? अरे जरा जोर से बोलो भाई। अच्छा आवक बढ़ रही है या कर्जे बढ़ रहे हैं? कर्जे बढ़ रहे हैं। ये गुणाकर भागाकर कैसे हो रहा है भाई? अच्छा तीसरी बात बताओ कि अगर कर्जा बढ़ गया है तो पूरे घर को फिक्र कर्जा उतारने की है या कर्जा बढ़ाने की? उतारने की। सब लोग उतारने की मेहनत कर रहे हैं या बढ़ाने की मेहनत कर रहे हैं? उतारने की। अच्छा सब एक साथ उतारने की मेहनत में लगे हैं, फिर नतीजे में बढ़ रहा है या उतर रहा है? जरा बताओ भाई। ये गुणाकर भागाकर भी मुझे समझ में नहीं आया, अगर आप आया हो तो आप मुझे समझा दो। ये अल्लाह का गैर निजाम है कि असबाब बढ़ गए, काम करने वाले बढ़ गए, काम करने की शक्लें बढ़ गई और उसके बाद भी हालात तंग हो गए, हालात तंग हो गए। पैसे खाकर मरने वालों की तादाद बढ़ गई, लोगों के पैसे खाकर मरने वालों की तादाद बढ़ गई, पैसे दबाने वालों की तादाद बढ़ गई, बेईमानी की तादाद बढ़ गई है। ये सारी की सारी शक्लें तंग में आती है। ये सारे के सारे शक्लें सुकून से जीने नहीं दे रही है। ये क्यों? अल्लाह का अल्लाह की मदद शामिल है। पहले जमीने वही थी, पहले जमीने वही थी, बाबा बड़द गाड़े से हल चला देते, बड़द गाड़े से हल चला देते और गल्ला भी हल से डालते थे और खेती ऐसे उगती थी कि घर भर जाता था। क्या भर जाता था बोलो? घर भर जाता था। अब ट्रैक्टर भी आ गए, यूरिया खतर भी आ गया, पानी के ट्यूबवेल भी आ गए, जोरदार फसल भी आ गए और फटाफट खेती करने के असबाब भी आ गए। फिर भी उन आमदनियों में ठीक है नई पद्धतियां शुरू हुई, बॉयलर देसी अनाज उगना बंद हो गए, घर नहीं भर रहे, घर तो नहीं भर रहे, अपना कोठा भी नहीं भर रहा है। ये क्या हुआ? कई बड़ी बरकतियां हुई है, बेबरकतियां। कई बातों को समझने और समझाने की मेहनत नदियों की मेहनत है। ये खाली जन्नत और जन्नत के लिए नहीं है, वो तो बात का मसला है, उससे पहले दुनिया है, इसका असर यहाँ बढ़ रहा है। हर एक बात कही जा रही थी, जिंदगी को यकीन बनाना है, जिंदगी का यकीन बनाना है कि अल्लाह इन्हीं रास्तों से करते हैं, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर और कोई रास्ता होता तो दुनिया में सब खुशहाल होते, दुनिया में सब माशाल्लाह मजे से होते, कोई किसी के रंगी में न होता। और जिसको हम कहते हैं कौशल जाओ मजा कर देखो हम लोग अभी फ्रांस गए थे पार्लियामेंट और ये पर्टिकुलर सिस्टम के हम लोग गए फ्रांस तो वहां से हम लोगों को जाना था जर्मनी तो हम निकले बेल्जियम और इटली होते होते आगे जा रहे थे तो हम रास्ते में खड़े रहे तो एक भी गाड़ी में कपल दिखे नहीं 100 गाड़ियां गुजरे 100 एक में भी कपल ना दिखे कि ये मियां बीवी के जोड़े हैं क्या एक मर्द जा रहा है या एक औरत जा रही है एक मर्द जा रहा है एक औरत जा रही है और या तो कुत्ता उनके साथ हो तो क्या बात हो गई कि लोग इस जिंदगी को हेडेक समझते हैं कि ये साथ में रहना एक दूसरे से बन जाएंगे ये साथ नहीं रहेंगे फिर क्या जिसको जब जरूरत हो जानवर की तरह जरूरत पूरी कर लो छुट्टी करो उनके वहां स्वीडन के एक आदमी हमको मिला स्वीडन का कहने लगा 12 साल में पहली एक लड़की है स्वीडन की जिसने छोकरा दिया है कोई लेती नहीं वाला अलग देना बंद हो गया जिंदगी तंग हुई है तंग वो तो हमने सब चीजें देखी नहीं है हम समझते हैं माशाल्लाह ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और यूं करने से ऐसा हो जाएगा ये सब हो रहा है दुनिया में खोल गया स्वीडन वहां कानून खुदकशी की इजाजत है वहां तुमको मरना हो तो मशीन में जाकर नोंदनी करवाने की कि भाई मेरे को मरना है मुझे टाइम दो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं ऐसे वहां अपॉइंटमेंट लोग लेते हैं कि हमको मरना है टाइम दे दो वो कहते हैं अभी तो बहुत फील है एक हफ्ते के बाद आना काहे के लिए अरे बोलो काहे के लिए मरने के लिए स्वीडन में ऐसे इजाजत है तो वहाँ एक मशीन बना हुआ है उसमें तुमको दाखिल करेंगे बटन चालू करेंगे उसके लिए कितना कितना हफ्ता लगता है हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन के बाद का टाइम मिलता है फुल भरा हुआ है लोग मरने के लिए मर जाते हैं ये दुनिया में तंगियां है इसलिए साबित फरमा देते हैं कि दिन जो हम लेकर आए हैं वो दिन से इन तंगियों से निकलने के लिए बच्चों का दिन आएगा बाप बच्चे माँ बाप के हक समझेंगे अच्छा बाप का ही हक है वही तोड़ा करेंगे यार माफ करो माफ करो पड़ोसियों में जब दिन आएगा पड़ोसियों के साथ रहना सीखेंगे अच्छा पड़ोसियों के साथ ऐसे रहना फिर वो पड़ोसियों से राहत पहुंचेगी बीवी दिन समझेगी तो शौहर को कहेगी अच्छा शौहर के साथ ऐसे रहना फिर वो शौहर को राहत पहुंचाएगी शौहर का दिन समझ में आएगा तो समझ में आएगा अच्छा बीवी के साथ ऐसे रहना तो फिर उसके साथ सलीके से रहेगी नौकर को दिन समझ में आ गया अच्छा शेठ के साथ ऐसे रहना फिर उसको राहत पहुंचाएगा शेठ को दिन समझ में आ गया अच्छा नौकर के साथ ऐसे रहना उसको राहत पहुंचाएगा हजूर के जमाने में सारे तबकों में बातें समझ में आई थी तो ऐसे मजे की जिंदगी थी ऐसे मजे की ऐसे खुशगवार जिंदगी उम्र के जमाने में एक औरत आई यमन से हज के लिए आई अकेली आई और सोने से लदी हुई आई हजरत उमर ने उनको पूछा कि ये बताओ तुम रास्ता चलकर आए तो रास्ता कैसा था तो कहने लगे कि जितने बड़े बुजुर्गों से मैं गुजर कर आई उन्होंने मुझे बेटी जैसा बनाया बेटी समझी और जितने छोटों से गुजर कर आया वो छोटों ने मुझे अपनी बहन की तरह रखा ये माहौल के सोने से लदी हुई किसी ने उस पर गलत निगाह नहीं की और हमारे फिजाओं में सगे भाई के वहां बहन बेटी छोड़ना मुश्किल सगी बहन के वहां बेटी छोड़ना मुश्किल पड़ोसी के वहां बेटी छोड़ना मुश्किल जहां रखो वहां मसला शुरू हो जाता है जहां रखो और अलामत कयामत में से ये है कि घरों में मसले शुरू हो जाएंगे घर में भी बहन सलामत नहीं रहेगी तले दल अमत बतः घर में औरतें घरों में बुराइयों में मुबतला होने वाली है हम ये सोचे बाहर के लोग ओ मेरी और आपकी बहन मेरी और आपकी बेटी अगर बात नहीं समझ में आई तो कि ये फहशी और यानी बढ़ाई जा रही है जानवर परे की जिंदगी को बढ़ाया जा रहा है हाँ जानवर परे की जिंदगी बढ़ाई जा रही है हुजूर ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा और मर्द और औरत रास्ते पर ऐसे बुरे काम करेंगे जैसे जानवर करते हैं कोई ये नहीं कहेगा कि मत करो उसको कहेंगे जाओ साहिब पर जाकर कर लो वो जमाने का बुजुर्ग आदमी होगा ऐसा माहौल आने वाला है हाँ इसलिए दूर नहीं है सब चीजें ये बॉर्डर है इसकी ये बॉर्डर है घर में ये सब बुराइयां शुरू हो जाएगी हाँ अंदर में तालीम कराता था तो मुझे एक लड़की ने एक खत भेजा उसमें था कि मुझे अल्लाह के वास्ते भी चलो मेरा देवर जब भी घर में आता है मुझसे गुनाह की नियत करके आता है अब घर में आता है और घर में देवर पार्क आदमी अगर बाइक पार्क करेगा तो 10 आदमी पूछेंगे कौन है भाई घर में देवर को कौन पूछेगा हमारे नबी ने फरमाया देवर मौत है मौत ये सब होगा जब अल्लाह का डर वजूद में नहीं आएगा तो घर में भी चीजें महफूज नहीं रहेगी अल्लाह का डर है जो इन चीजों को वजूद में लाएगा मारने से कानून बनाने से कोई चीज नहीं होती कितनी 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 जेलें भरी हुई है तो जेल में से निकलने वाले सब सुधर कर आते हैं और जराइम लेकर आते हैं मारने से कोई सुधरता है तो अगर सुधरते तो जेलें नहीं भरती इतने सारे जेलों में नहीं जाते अल्लाह का डर है जो आदमी को डराता है वो गुलाम से कहा जंगल में बकरियां चरा रहा हो भाई एक बकरी दे दे मेरी नहीं है मेरे आका की है आका से कह देना भेड़िया खा गया तो गुलाम कहने लगा आका से तो कह दूंगा अल्लाह कहाँ चले गए एकदम झटका दे रहा है अल्लाह कहाँ चले गए ये कौन सी चीज है जो लोग लगाम डाले हुए अल्लाह का डर है हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं ये मेहनत से अल्लाह का डर पैदा होगा यकीन पैदा होगा اس لیے اللہ کے راستے میں جا کر چار چار مہینوں میں یہ اللہ کا ڈر اور یقین پیدا کرنا ہے, اس زندگی سے زندگیاں بننے کا یقین بنانا ہے, تو ہم اس ڈگر پر جی سکیں گے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, اس سے نہیں ہوگا. یہ تو ایسا سمجھو ایک آدمی کو خالی بولی بولی سنا کر بھیج دیا اور کہا پھر کرو. ایک آدمی کو ڈرائیونگ ہم نے سمجھائی, خالی بیان سے سنائی, بھائی ڈرائیونگ ایسے کرنے کی, ڈرائیونگ ایسے کرنے کی, اس کو گیئر کہتے ہیں, کلچ ایسا ہوتا ہے, بریک ایسی ہوتی ہے, اس نے ایکسیلریٹر پر یوں کرنے کا. پھر ہم نے پوچھا, بھائی سمجھ گئے؟ کہ بھی سمجھ گیا, چلو جاؤ گاڑی کھڑی ہے چلاؤ. بھائی چلا لے گا وہ؟ ارے بھائی چلا لے گا. سمندر میں کیسے تیرنے کا, سانس یوں لینے کا, ہاتھ یوں مارنے کا, پیر یوں مارنے کے, ہاتھ یوں ہلانے کے, اور جب طوفان آ جائے تو یوں کرنے کا. یا بھیا ہم نے سب سمجھایا. ارے بھائی سمجھ گئے؟ کبھی سمجھ گئے. چلو ہماری مسجد کے حوض میں تیرا تیرو. ارے بولو بھائی تیرے گا؟ ہم سب ایسا کہتے ہیں, مولوی صاحب تم ساری باتیں یہی سمجھا دو, ہم سارے بزرگ یہی بن جائیں گے. اگر خالی کہنے سننے سے بن جاتے ہیں نا, تو ہر جمعہ میں مولانا بیان کرتے ہیں, ہم جنید بغدادی کے ابا بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے بولو؟ ہم سب کیا بن جاتے بولو؟ سب جنید بغدادی بن جاتے ہیں. لیکن ہم بن گئے کیونکہ یہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے زندگی. سیکھنے سے یہ زندگی کا یقین زندگیوں میں آئے, یہ زندگی سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہاں ایک وہ زندگی اللہ کے راستوں میں جا کر سیکھی جائے, پھر اس کے بعد آنے کے بعد اپنے مقام پر اس ماحول میں جیا جائے. اگر اس ماحول کو اللہ کے راستے میں جا کر ہم اکثر لوگ سیکھ لیتے ہیں, ہم نے دیکھا اللہ کے راستے میں لوگ جماعت میں جاتے ہیں نا چار مہینے چلے میں, تو وہاں جا کر ماشاء اللہ جو آدمی نماز ہی نہیں تھا, ایک نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ وہاں جا کر تہجد کا عادی بن جاتا ہے. بھائی کیسے ہوا؟ کچھ نہیں, اس کو ماحول نے اثر کیا ہے, اس کے ماحول کا اثر ہے. جو آدمی چمچ گھر میں نہیں بناتا تھا, وہاں 15 آدمیوں کا کھانا بناتا ہے. بولو بناتا ہے نہیں بناتا ہے؟ تو وہاں ماحول اثر ڈالتا ہے. ماحول سب پر اثر کرتا ہے, ماحول کسی کو نہیں چھوڑتا. دیکھو ٹھنڈی ہے تو سب پر ماحول کا اثر ہے, تو ماحول میں آدمی بنتا ہے. ماحول میں بنا ہوا آدمی آتا ہے. بعض مولانا ساتھی کہتے ہیں, مولانا ہمارا بیٹا چار مہینے گیا تھا, اب تو نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کا کیا فائدہ؟ کیا چار مہینے بھیجنے کا فائدہ؟ تو بھائی تو اس کا کیوں قصہ نکالتا ہے, کیوں کیا بات ہو گئی؟ بھائی وہ تو وہاں اچھا بزرگ بن کر آیا تھا, تہجد بھی پڑھتا تھا, تسبیح بھی پڑھتا تھا, کھانا بھی بناتا تھا, گیرج میں گاڑی کمپلیٹ ہو گئی تھی, پھر جس راستے پر چلتے وہ راستہ ٹوٹے لائے, وہ گاڑی کمرے میں سے نہیں آئی تھی. لیکن جس راستے پر جس ہائی وے پر گاڑی چلتی ہے وہ ہائی وے کیسا ہے بولو؟ تو نئی کمپنی کی گاڑی بھی کیا ہو جائے گی؟ ارے بھائی ذرا زور سے بولو, ٹوٹ جائے گی. گھر میں 10 ممبر تھے, ایک جماعت میں جا کر آیا, دوسرے 9 ممبر بکھیڑا کرتے ہیں گھر میں, بے نمازی ہے, گناہ کے کام ہو رہے ہیں, گھر میں فلمیں دیکھی جا رہی ہے, لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہے. اب بےچارا ایک آدمی اس میں بن کر آیا ہے, کتنی ٹکر لے گا وہ؟ ایک آدمی اس میں آیا ہے, کتنی ٹکر لے گا؟ کب تک ٹکر لے گا؟ تھوڑے دنوں میں وہ 9 اس پر غالب آ جائیں گے. بھائی 500 لیٹر کی ٹھنڈے پانی کی ٹنکی ہے, بےچارا 1 لیٹر پانی اس میں ڈالو, 1 لیٹر پانی کیا ہو جائے گا؟ 500 لیٹر کو گرم کرے گا تو کیا ہوگا؟ 500 لیٹر اس کو ٹھنڈا کر دے گا. جس محلے میں ہے سب ٹھنڈا پانی ہے, جس گھر میں ہے وہاں ٹھنڈا پانی ہے, جس مسجد میں ہے وہاں سب ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے. اس بےچارے کی گرمی کب تک ٹکر لے گی؟ تو وہ بھی ایسا ہو جائے گا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یہ گرمی رہنی ہے, کہ اس دین کی یقین کی بات زندگیوں میں آ جائے. پھر اس کے بعد اکثر وقت ہم اپنے مقام پر رہتے ہیں, اکثر وقت ہمارا مقام پر گزرے گا. اس لیے کہ آدمی 40 دن جائے گا تو 320 دن مقام پر ہے, 4 مہینے جائے گا تو 8 مہینے مقام پر ہے. اگر اس کا مقام پر یہ اچھا ماحول نہیں ملا تو پھر وہ وہاں کی بنی ہوئی زندگیاں خراب ہو جائے گی, اور زیادہ وقت یہاں رہنا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مسلمانوں کی ہر وہ جگہ جہاں اس کو رہنا ہے وہاں کا ماحول اچھا بناؤ, کیونکہ ماحول اثر کرتا ہے. کسی کو ماحول نہیں بخشتا, کسی کو نہیں چھوڑتا. دیکھو بیت اللہ ہے, بیت اللہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سب سے بڑی ہدایت کی جگہ کون سی ہے بولو؟ بیت اللہ. ہدایت کا مرکز بیت اللہ ہے. بیت اللہ میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, لیکن ہمارے نبی سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی عبادت کرنے والا نہیں آیا, اور اطراف میں سب لوگ بت پرستی کرتے تھے. تو بت پرستی بڑھتے 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 کہاں چلی گئی بولو؟ ارے ذرا زور سے بولو, بیت اللہ میں. بیت اللہ میں کتنے بت لوگوں نے رکھ دیے؟ 360, ایک دو بھی نہیں. اطراف کا ماحول اثر کرتے کرتے بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچ سکتا. کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے جہاں جس کو جو آنا ہو میرے گھر میں تو ہے نا سلامتی, او بھائی کل جو محلے میں ہو رہا ہے تیرے گھر میں بھی ہو رہا. بیت اللہ جیسا بیت اللہ بچ نہیں سکا, اس کو ماحول نے اثر کیا. تو میرے اور آپ کے گھر میں بھائی محلے میں پانی بہت آ گیا, کیچڑ. اب ہم کہیں اس کے گھر کے آگے کیچڑ ہے, پر تیرے چھوکرے تو اسی میں سے گاڑی لے کر آئیں گے, تیرے چھوکرے اسی کیچڑ میں سے سائیکل لے کر آئیں گے, پیدل آئیں گے تو اسی کیچڑ میں سے آئیں گے, تو چپل کے ساتھ کیا لائیں گے؟ ارے بولو بھائی کیا لائیں گے؟ کیچڑ. وہ ہمارے گھر میں بھی آنا ہے, ہم جی کہتے ہیں وہاں آئے وہ جانے ان کا کام جانے, نہ بھائی کل وہ یہاں آنا ہے. ماحول کا اثر ہے.
मोहल्ले में गटर का पानी बाहर आ गया, तो उसमें गटर के पानी में कितनी अच्छी खुशबू आती है। अरे भाई खुशबू आती है ना, अच्छा क्या आता है तो फिर? बदबू आती है। जब हवा का झोंका चला तो वो बदबू किसके किसके घर में जाएगी? अरे जरा जोर से बोलो भाई, सबके। उस मोहल्ले में मौलाना का भी मकान है, तो अमीर साहब का भी मकान है, हाजी साहब काजी साहब का भी मकान है। बदबू कहेगी ये तो हजरत मौलाना का मकान है, मैं जरा टन लेकर निकल जाऊं। अरे बोला ऐसा कहेगी ना वो, तो वो क्या करेगी? जरा जोर से बोलो भाई, क्या मौली साहब के मकान में भी? वो कोई नहीं समझती कि कौन मौली साहब, कौन हाजी साहब, कौन काजी साहब, कुछ नहीं समझती। कौन अमीर साहब, कुछ नहीं समझती। वो बदबू किसके किसके घर में घुसेगी? सभी के घर में घुसेगी। यहाँ किसी का रिश्ता नहीं चलता। इसलिए अल्लाह के सलाम ने मुसलमानों के जो रहने की जगह थी वहां माहौल बनाया। मुसलमान का रहता है तीन जगहों पर, या तो मुसलमान मस्जिद में होगा, या मोहल्ले में होगा, या बाजार में होगा। बोले यही तीन जगहों पर रहता है ना, तो मुसलमान की इन तीनों जगहों पर हुजूर ने माहौल बनाया। कैसा माहौल बनाया? कि जो मुसलमान मस्जिद में आता था उसको मस्जिद से दीन मिलता था, जो मुसलमान घर में जाता था तो घर में इतने दीन के चर्चे जिंदा हो गए कि घर वालों में घर का दीन मिलता था। और बाजार, हजरत अली फरमाते थे कि हमारे बाजार ऐसे भरे हुए थे कि जैसे मुसलमानों की मस्जिद होती है ऐसे हमारे बाजार थे। सुकुल मुस्लिमीन का मुसल्लाहुम, के मुसलमानों के बाजार उनकी मस्जिदों की तरह थे। वहां जैसे कोई मस्जिद में बेईमानी नहीं करता, ऐसे बाजार में कोई बेईमानी नहीं करता था। कि ऐसे माहौल थे तो फिर मुसलमान महफूज होता था। ऐसा माहौल जोरदार बना, इतना जोरदार कि मुनाफिक भी क्या पढ़ता था बोलो? अरे बोलो क्या पढ़ता था? क्या मुनाफिक भी नमाज पढ़ता था। कि किसी के छुपने की जगह नहीं, माहौल है माहौल। देखो अभी माहौल है, सबके सरों पर टोपी आ गई, कैसे आ गए? क्या माहौल है? और जब माहौल नहीं होता तो हम लोग मायूस गए, फ्रांस से एक मुल्क है मायूस। तो जब हम वहां गए तो हमको वहां के लोगों ने सुनाया, हमारे वहां तो बच्चे मस्जिद की सीढ़ी पर शराब पीते हैं, मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर शराब पीते हैं, रमजान के महीने में पीते हैं। क्या सुनाया? कि मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर, 99% मुसलमानों का मुल्क है वो, फ्रांस का है वो, फ्रांस का मुल्क है, मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर हमारे बच्चे शराब पीते हैं। हाँ, क्या का असर है? का माहौल का असर है। और जब माहौल था तो मदीने में मुनाफिक भी नमाज पढ़ रहा है, का माहौल का असर है, माहौल ऐसा असर करता है। हम ये ना समझे भाई ठीक है इतनी बात हो गई ना, हमारे घर का माहौल होगा तो हमारे बच्चों को घर से ये चीज मिलेगी, मोहल्ले का माहौल होगा तो मोहल्ले से मिलेगी, वरना घर में माहौल है मोहल्ले में नहीं है तो बच्चे जल्द मोहल्ले का असर लेंगे। ये जितने आड़े उड़े बाल काटते हैं उनको कोई हमारे मोहल्ले में, अभी मुझे कहाँ से आया? अब वो यहूदी है ना, वो नसरानी है ना, वो अमरीका है। अरे भाई तेरे घर में कोई आया कोई अमरीका वाला आज तक? ओ भाई साहब कोई यहूदी आया? वो भाई साहब कोई आया भाई? अरे बोलो हमारे घरों पर आया? हमारे कपड़े बच्चों के बदल गए तो हमारे घर पर कोई कपड़े देने आया था, कोई उसके एडवर्टाइज करने आया था? हम वो है ना वो यहूदी वो नसरानी, पर तेरे घर में कभी आया बता तो खरा? कोई नहीं आया, उन्होंने अपनी बात दुनिया में चलाई है, जिस रास्ते से भी चलाई वो इतनी चली कि उनकी स्टाइल, उनके कपड़े, उनका रहना करना, उसने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया। अब हमारे बच्चों पर हमारे उनकी चलती है, हमारे बच्चों पर हमारी नहीं चलती, हमारी बच्चों में उनकी स्टाइल है, हमारी स्टाइल नहीं चलती। हरम में जाओ तो हरम के कपड़े दो, उनके कपड़े जितने बिकते हैं इतने इस्लामी कपड़े नहीं बिकते। आप देखो हरम के बाद सारे बाजार उनके कपड़ों से भरे हुए हैं, तो उसका तासुर लोग बने नहीं था, उन्होंने अपनी बात चलाई है। तो माहौल का असर होता है, माहौल का, हमको ये माहौल बनाना पड़ेगा तो हम दीन ईमान पर मर सकेंगे। अगर हमने नहीं बनाया तो फिर जैसा जियेंगे ऐसे ही मरेंगे। तुम्हारा फरमा देते जैसा जी हो गया ऐसे मर हो गए। मुसलमान दिन चूसता है, इसका दिल चीजें चूसता है। ये डल्लो पे डल्लो, ये वो पानी में डालो तो क्या चूसेगा पानी, फिर इसको निचोड़ो क्या निकलेगा, और शराब में डालो तो शराब को चूसेगा, फिर इसको निचोड़ो क्या निकलेगा, शराब। ऐसा होता है कि उसको शराब में डालो और दूध निकाले? अरे बोला ऐसा, ये मन है ना मन, ये भी चीजें चूसता है। हाँ, ये दिल चूसता है। हमारा छोटा बच्चा होता है ना, दिन भर खेलता है बच्चों के साथ, तो रात में बेहोश करते हैं, बेहोश होता है ना रात में, हम सब बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं होता क्या हो रहा है। तो हमारा बच्चा उसके बोलना शुरू करता है, अम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अम्मी मुझे मदरसा नहीं जाना है, अम्मी मेरे से क्या लड़ता, क्या बोलता है, कौन करता है? ये नहीं बोलता, उसका मन बोलता है। क्या बोलता है बोलो? उसका मन, दिन भर उसने ये किया, अब अंदर से वही निचोड़ रहा है, वो बाहर आ रहा है। बेहोशी में आदमी अंदर की चीज बाहर आती है। ऑपरेशन में लोगों को ले जाते हैं ना, तो कोई गालियां देता है, कोई गाने गाता है, कोई बयान करता है, कोई कुरान पढ़ता है, आपने सुना है सभी सुना। ये क्या बोलता है? ये नहीं बोलता, जिंदगी भर उसके मन में जो भरा है ना, बेहोश करके उसकी कैसे चालू हो जाती है। आपने सुना नहीं सुना, बोलो ना भाई, ये बेहोश होते ही होता है ऐसे, जब मौत आएगी, मौत बड़ी बेहोशी है, अंदर जो भरी हुई होगी वो बाहर बात आएगी। लोग कलमा पढ़ा रहे होंगे लेकिन उसके अंदर होगा तो ना, लिखा एक आदमी को कलमा पढ़ा रहे थे, वो क्या कह रहा था, तू शराब का जाम तू भी पी, शराब का जाम मुझे भी पीना। एक आदमी को कलमा पढ़ा रहा है, वो क्या कह रहा है, दस दस रुपए ग्यारह ग्यारह रुपए, दस दस रुपए ग्यारह ग्यारह रुपए, ये क्यों ऐसा हुआ, उसके मन में ऐसी भरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सलामती हो तो इन चीजों के साथ जीना पड़ेगा, तो इसके लिए अपनी सोच को दीनी सोच बनाओ। हमारे उधर फरमाते हैं दीनी सोच बने, हमारे जिम्मे दो जिम्मेदारियां हैं, एक अपनी जात की और एक पूरी दुनिया के मुसलमानों की, दो जिम्मेदारियां हमारे जिम्मे हैं। क्यों, हम अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह की जिम्मेदारी है, हम हुजूर की उम्मत ही है, दुनिया में कोई नबी नहीं आएंगे तो दुनिया में बसने वाले सारे ईमान वालों की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें दो काम करने हैं, अल्लाह के रास्ते में जाकर ये जिंदगी खुद सीखना, उस बस्ती वालों को ये जिंदगी सिखाना, सीखने के लिए नकल जमातों में भेजना, जब वहां से घर पर आ जाएं तो घर में अपनी ये फिक्र हमारी बाकी रहे, इसके लिए रोजाना मस्जिद के मशवरे में बैठना। कि जब हम मस्जिद के मशवरे में रोजाना बैठेंगे ना तो आदमी की सोच और फिक्र दीनी सोच फिक्र रहेगी, कौन सी सोच बोलो, दीनी सोच दीनी फिक्र रहेगी, और आदमी की फिक्र जो बनती है ना, आदमी ऐसे काम करता है कि लिखने वालों ने लिखा है कि आदमी अपनी फिक्र के ताबे होता है, आदमी की फिक्र उसके अमल का इमाम होती है। एक आदमी को धुन चढ़ गई शादी करने की तो कुछ भी करके शादी के प्लान बना देता है, एक आदमी को धुन चढ़ गई हज करने की तो कर्जा लेकर भी हज में जाता है, एक आदमी को घर बनाने की धुन चढ़ी कुछ भी करके घर की प्लानिंग करता है, बोलो होता है नहीं होता। तो आदमी की फिक्र उसके अमल के, उसकी अमल उसके ताबे होता है, जो फिक्र होगी ऐसे काम आदमी करेगा। तो हमारी सोच भी नहीं रहे, हमारे जज्बात भी नहीं रहे, इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं रोजाना अपनी मस्जिद और जमात में थोड़ी देर बैठो, ये 5-7 मिनट का मशवरा तुम्हें दीनी सोच वाला बना देगा। इसलिए हमारे वहां कहा जाता है कि उसमें दो चीजें होती है, भाई मेरी जिंदगी में और पूरी दुनिया के लोगों में दीन आ जाए उसकी फिक्र 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए, लेकिन इतना बड़ा अमल हमें दीन वाला बनाकर रखेगा। कैसा रखेगा बोलो, दीन वाला। इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अपनी हिफाजत का पहला जरिया अपनी सोच और फिक्र को दीनी सोच बनाओ, इसके लिए रोजाना अपने मस्जिदार जमात में मशवरे में बैठो। अल्लाह का एहसान है कि हमारी मस्जिदों में मस्जिदार जमात है और रोजाना मशवरे के लिए बैठती है, जिसमें जो लोग उसमें बैठते हैं बहुत खुशकिस्मत है। बाकी अगर हमारी उसमें कमजोरी है तो हम सब नियत करें कि भाई मुझे तो मुसलमान अल्लाह ने बनाया है, मुसलमान जीना है, मुसलमान मरना है, तो मैं इस्लामी फिक्र के साथ रहूं। इसके लिए रोजाना इंशाल्लाह पहला अमल जो मशवरे में बैठने का है वो जरूर मैं करूंगा, करोगे इंशाल्लाह। कौन कौन तुमने से नियत करता है कि मैं अपनी सोच भी इस्लामी बनाने के लिए बैठूंगा, अल्लाह तौफीक दे। ये हुआ कि उसके बाद दूसरा क्या काम करना है, अपने घर वालों की सोच दीनी बनाओ। हमारे नबी अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया, नबी अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। हमारे घर वालों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे घर वालों का अल्लाह हमसे हिसाब लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या उसके लिए जहन्नम है, या तो जन्नत है या जहन्नम है। अगर हम सोचें कि मैं आज मर जाऊं आज, तो मेरी औलाद को मैंने क्या दिया है, वो मेरे पीछे कैसे काम करेगी, मुझे जन्नत में ले जाओ ऐसे काम करेगी या मुझे जहन्नम में धकेले ऐसे काम करेगी, मेरे ऊपर डिपेंड रखता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या दिया है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बच्चों के बनने की जगह घर है, घर, बच्चों के बनने की जगह क्या है बोलो, घर, माँ की गोद, माँ की गोद, बच्चे माँ के ताबे होते हैं, माँ के ताबे। इसलिए हम हमारे जिम्मे है कि हम अपने घर को दीनदार बनाए, और घर को दीनदार बनाने के लिए घर वाली को दीनदार बनाए। किसको दीनदार बनाए बोलो, घर वाली को। घर वाली इसलिए कहते हैं कि उसी की चलती है, वो घर की वाली होती है, वो किसकी वाली होती है बोलो, घर वाली, वो घर वाली होती है, उसी की चलती है, हमारी नहीं चलती। अक्सर देख लो हमारे घरों में हमारी, हम हमारी नहीं चलती है, हमारे घर में हमारे औरतों की चलती है और बच्चों पर औरतों की चलती है। बच्चे माँ की बोली बोलते हैं, किसकी बोली बोलते हैं, हमको किसी को पूछना हो भाई तुम्हारी कौन सी भाषा है, हम क्या पूछते हैं, भाई तुम्हारी पितृ भाषा कौन सी है, यही पूछते हैं, यही पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं, तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है, तो क्यों भाई क्या बात हो गई, मित्रों और पितरों में क्या फर्क हो गया, पितरों भी वही भाषा बोलता है जो मातृ बोलती है, पर मातृ की बोली नकल होती है, बच्चे मातृभाषा बोलते हैं। इंग्लिश में पूछते हैं भाई तुम्हारी मदर टंग कौन सी है, कोई ऐसा पूछता है तुम्हारी फादर टंग कौन सी है, ऐसा पूछता है भाई, तो क्या पूछते हैं, मदर टंग, बच्चे माँ की बोली बोलते हैं। अरबी में पूछते हैं तुम्हारी लुगतुल उम, फारसी में पूछते हैं तुम्हारी मादरी जबान, ऐसा नहीं पूछते तुम्हारी पीदरी जबान, पीदर बाप को कहते हैं, मादरी जबान है, बच्चे माँ की बोली बोलते हैं। माँ में कुछ होगा बच्चों को दे सकेगी, माँ में ही नहीं है बच्चों को क्या देगी। इसलिए माँ नेक बननी चाहिए, और माँ जो नेक बनेगी वो उसके शोहर से नेक बनेगी, और उसका शोहर उसको नेक बनेगा, वो अच्छी नीति के कामों में जुड़ा रहेगा तो नेक बनेगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं मस्जिद की बात अपने घर में लेकर जाओ, जो मस्जिद के मशवरे में बातें हैं उसको अपने घर में लेकर जाओ, और अपने घर में इसकी चर्चे करो। हमारे घर में सारे चर्चे हैं, अगर चर्चे नहीं है तो अल्लाह रसूल के चर्चे नहीं। हमारा घर होटल बनता है खाते हैं, हमारा घर लॉज बनता है अब सोते हैं, हमारा घर मुसलमान का घर नहीं बनता। हमारे घर में 5 मिनट अल्लाह रसूल की बातें नहीं होती। चलो इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं पूछूं हमारी शादी हुई किसी के 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, बीवी को हमने कभी सामने बैठा कर पूछा हो अल्लाह के बंदी तू मुझे नहीं जानती थी, मैं तुझे नहीं जानता था, अल्लाह ने एक बोल से हमें साथ कर दिया, एक दिन आएगा कि तू भी जुदा हो जाएगी मैं भी जुदा हो जाऊंगा, और ये औलाद जो हमारी है या तो वो हमारी जन्नत का जरिया है या हमारी जहन्नम का जरिया हमें नहीं पता है, तो अल्लाह के बंदी लातूम में और कोशिश करें कि हमारी औलाद हमारी जन्नत का जरिया बने, और अल्लाह के बंदी ये मरने के बाद हम तेरी भी जन्नत बने मेरी भी जन्नत बने, ऐसे अमल में हम मशहूर हों, उसके साथ जिंदगी गुजारें। हमने अपनी जिंदगी में कितनी बार उससे कहा हमारे घर में चर्चे खत्म, सारी दुनिया भर के चर्चे हमारे घर में हैं, अगर चर्चे नहीं है तो ये चर्चे हमारे घर में नहीं। हमारे उधर कहते हैं कि इन चर्चों को जिंदा करने के लिए रोजाना घर में फजाइल अमल की किताब पढ़ो। ये फजाइल अमल की किताब इसमें 7 किताबें हैं, 7 किताबें। पहले मुसलमान कैसा होता है, हिकायत सहाबा, मुसलमान मर्द कैसा होता है, मुसलमान औरतें कैसी होती है, मुसलमान बच्चे कैसे होते हैं, मुसलमान की रातें कैसी, मुसलमान के दिन कैसे, ये सारी बातों के उसमें चर्चे हैं। जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे अच्छा मुसलमान ऐसा होता है, उसके जज्बे बनेंगे ऐसा बनने के। हमारे बच्चों को सारी दुनिया के सारे लोगों का पता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का पता नहीं है। ये जिंदगी हमारे घर में पढ़ी जाए, 5 मिनट भी पढ़ी गई ना तो वो असर करेगा। फिर ये किताब में क्या है कि हमारे पूरे दीन की तालीम है, हमारे दीन 5 शोबों का नाम है, ईमानियात, इबादत, मामला, माशरत और अखलाकियात, ये 5 शोबे मिलकर दीन बनता है। इसमें 5 शोबों का दीन है, ईमानियात है, फिर इबादत के 5 अरकान, ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ये 5ों का। फिर इसके बाद मामला का, हलाल का क्या है, हराम का क्या है। फिर माशरा, अम्मी के साथ कैसे रहना, अब्बा के साथ कैसे रहना, भाई बहनों के साथ कैसे रहना, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना, फिर अखलाकियात। जब ये किताबें पढ़ी जाएगी घर में तो हमारे बच्चों की विचारधारा बदल जाएगी। बोलो क्या बदलेगी, बोलो विचारधारा। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं इसलिए इसको घर में पढ़ो तो तुम्हारी औरत बदलेगी और उससे बच्चे बदलेंगे, बच्चे माँ की बोली बोलेंगे। हमारे हजरत फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, हजरत रहमतुल्लाह, एक मर्द बनेगा तो एक मर्द बनेगा, और एक औरत बनेगी तो उसकी नस्ल और खानदान बनेगा। एक औरत का बनना एक घराने का बनना। हजरत फरमाते थे मर्दों का दीन दरवाजे की चौखट तक और औरत का दीन घर के अंदर तक, हमारा दरवाजे की चौखट तक रह जाता है। इसलिए घर में इसको ले जाना है, अपने घर में तालीम करती है, और मौका बौका 6 सिफात का मुजाकरा करो, 6 सिफात का मुजाकरा। 6 सिफात के मुजाकरे में ईमान, नमाज और फिर उसके बाद इल्म, फितर, इकराम, इखलास और तकदीर, ये 6 सिफात का मुजाकरा। हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा बोलना चाहिए अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा से नहीं होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में 100% कामयाबी है, उसके अलावा के तरीकों में 100% नाकामी। कौन बोलता है कि हमारा 4 साल का मुन्ना बोलता है, क्या बोलता है, अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है, जीना फट जाए ऐसे बोलना चाहिए। हमारे बच्चों से बुलवाना है तो फिर भी अल्लाह के गैर का तासुर निकल जाएगा, के जर्रे से लेकर जिब पहाड़ तक और जिब्राइल से लेकर चोटी से लेकर जिब्राइल तक, ये इसका कुछ नहीं, अल्लाह जो करेंगे वही होगा, एटम बम से भी कुछ नहीं होगा, अल्लाह करेंगे उससे होगा। ये हमारे घर के चर्चे बनेंगे तो ये मखलूक का तासुर निकल जाएगा, ये मखलूक का तासुर निकलेगा तो अल्लाह के हुक्म पूरा करना आसान होगा। अगर अल्लाह का तासुर नहीं है तो इनका तासुर है, इनका है, इनका है, तो इनकी भी जय, इनकी भी जय, इनकी भी जय, इनकी भी जय, इनकी भी जय। जिसकी जिससे आदमी को नफी की उम्मीद होगी उनकी तारीफ करेगा, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, जीवन तो चापलूस आदमी बनेगा, चापलूस। क्यों? इससे भी नफा की उम्मीद, जिससे भी उम्मीद, जिससे भी उम्मीद। और अगर ये चापलूस ही पता निकल गया, अल्लाह ही का डर है, नफे नुकसान के मालिक अल्लाह है, न किसी के हाथ में हमारा नफा, न किसी, तो फिर सच्ची जिंदगी मौजूद नहीं। इसलिए हमारे लोग फरमाते हैं घर में तालीम करनी है, इसलिए सब नियत करो कि अपने घर की फिक्र के लिए घर की तालीम करेंगे। कौन कौन नियत करता है करेंगे, लेकिन घर में तालीम के लिए घरवाली को घरवाली बनाना है, उसको प्यार मोहब्बत से कवर करना है। अल्लाह ने दुनिया में एक रिश्ता ऐसा बनाया जो सबसे पहला बना, कौन सा रिश्ता है, मियां बीवी का रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का बना। अल्लाह ने सबसे पहले आदम और हव्वा को बनाया है, तो पहला रिश्ता मियां बीवी का, और सबसे आखिर तक जो रिश्ता बाकी रहेगा वो भी मियां बीवी का। जन्नत में कौन सा रिश्ता होगा, अम्मी के साथ जाओगे जन्नत में, अब्बा के साथ जाओगे तो किसके साथ जाओ, देवी के साथ जाएंगे। अल्लाह ने रिश्ता हमेशा के लिए रखा है, अल्लाह ने इसको करीब रखा है, करीब। अल्लाह ने इस रिश्ते की बहुत मजाक कर रखी है, हम थोड़ी थोड़ी बात में उसके साथ लड़ भिड़ कर खत्म कर दो, जिससे हमारी नस्ल वजूद में आती है उसी से हम लड़ते हैं, तो हमारी नस्ल भी लड़ती नस्ल वजूद में आती है, क्योंकि हमने जिंदगी भर उससे लड़ाई है, उसमें लड़ता लड़ता ही बच्चा पैदा होगा। हाँ, ये माँ को अच्छे रखो, ये उसका पेड़ है ना, वो डाई है, डाई उसी में बच्चा बनता है, ये डाई जैसी होगी बच्चा ऐसा बनेगा, ये डाई पाक है तो बच्चा पाक, ये हया वाली है तो हया वाला, ये तहारत वाली है तहारत वाला, ये डाई है डाई, यहाँ बच्चा बन रहा है और माँ गलत देख रही है, बहन गलत देख रही है, जबान गलत बोल रही है, कान गलत सुन रही है, दिमाग से गलत सोच रहे हैं, सब सुबह से शाम तक गंदा ही गंदा, फिर दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारा बच्चा होने वाला है उसके दिन बगदादी बना दीजिए, वो जिन्हें दादाजी बनेगा शैतान का दादा बनेगा वो। हाँ, हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे घरों में इसकी फिजा नहीं है, तो नस्लें नस्लें हमारा वजूद में आ रही है, इसलिए बीज अच्छे पड़ने चाहिए, खातर अच्छा मिलना चाहिए, जो फसल होगा नहीं उसका बीज भी अच्छा हो, खातर भी अच्छा हो। हमारे ऐसा रमतुल्ला फरमाते थे, अगर किसी ने निकाह किया और निकाह में जान बुझ कर सुन्नत तरीका छोड़ देगा ना, अल्लाह पाक उसकी औलाद में से इताअत खत्म कर देंगे, बीज गलत पड़ गया जाओ। इसलिए ये सीखने की चीजें हैं, फिर बाद में दुआएं करवाते हैं, ये दुआएं पहले पहले बम्बई की गाड़ी जब जानी थी दिल्ली में चढ़ गए और दुआ मल साहब दुआ कर दो बम्बई पहुंच जाऊँ, भाई साहब दिल्ली की गाड़ी में बैठे हैं वो बम्बई नहीं जाएगी, तदबीर अच्छी इख्तियार करो फिर दुआ करो, तदबीर अच्छी इख्तियार करनी, उसके औलादों को अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छा बनना है, हमारी घरवालियों के घर के तालीम है, फिर उसके बाद यही तालीम हमारे मोहल्ले वालों को सुनानी है, इसके लिए हमारी मस्जिदों में तालीम होती है, इसको खुद सुने और मोहल्ले के सारे लोग सुने, उसकी मोहल्ले में मेहनत करनी है, क्यों कि अगर मोहल्ले वाले इसको नहीं सुनेंगे तो ये पता नहीं क्या क्या बातें सुनते हैं, रोज बेईमानी की बातें कानों में पड़ती है, अमानतदारी की, ईमानदारी की, दयानतदारी की, दीनदारी की जब बातें इनके कानों में पड़ेगी ना, तो ये इनकी फिक्र बदलेगी, इनके जज्बात बदलेंगे, इनके सोच बदलेंगे, इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं इस तालीम को हर घर में जिंदा करो और यही तालीम हमारे मस्जिद का हर मुसल्ली सुने, ताकि इनको सुन सुनकर सोच बदल जाए, फिक्र बदल, सुनने से बहुत बड़ा असर पड़ता है, सुनने से क्या होता है बोलो, बहुत बड़ा असर होता है, ये जितने लोग आए हैं ना, ये किसी ना किसी ने इनको दीन की बातें सुनाई तो यहाँ गए, अगर ना सुनते तो यहाँ थोड़ी आते, ये सुनाया इसलिए यहाँ आए हैं, इसलिए जो मस्जिद में आ रहे हैं उन सबको कहो कि भाई मस्जिद में तालीम सुनो। हाँ, सुनने से आती की कैफे बदल गया, देखो अभी तुम बात सुन रहे हो तो बहुत सारे लोग नियतें करेंगे, ये सुनने से नियतें बनती आदमी की, इसलिए मस्जिद में भी इस तालीम को किया जाए और उसको उसमें सारे मुसल्ली बैठे उसकी फिक्र की जाए, तो आप लोग नियत करो कि इंशाल्लाह घर में भी तालीम करेंगे, मस्जिद में भी तालीम में बैठेंगे, खुद बैठेंगे और सबको बैठेंगे, रहमान खान नियत करता है अल्लाह तौफीक है, दो काम हो गए, एक मशवरे में बैठना है, एक घर और मस्जिद की तालीम कर रही है, तीसरा काम क्या करना है कि जो तुमने अपनी फिक्र की वो मोहल्ले वालों की फिक्र करता हो, क्यों कि हम आपको नबी आने वाले नहीं है, ये बेचारे हमारे भाई है, जिसने कलमा पढ़ा वो हमारे भाई हैं, हमारे नबी ने फरमाया तुमने से कोई आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करो जो अपने लिए करते हो, तो जो चीज हम अपने लिए पसंद करेंगे वो सारे मुसलमानों के लिए पसंद करेंगे, तो उसके लिए क्या करना, रोजाना अल्लाह के दीन की मेहनत को टाइम दो, किसको टाइम दो बोलो, जरा जोर से बोलो, अल्लाह के दीन की मेहनत को टाइम दो। भाई हम टाइम कौन से लाएंगे, हम तो बहुत बिजी लोग हैं, अरे भाई हम तो बहुत, ना भाई ये धोखा है, हम बिजी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ आप कितने घंटे कारोबार करते हो, अरे बोलो कितने घंटे कारोबार करते हो, जरा जोर से बोल दो, बोला 8 घंटे, वो चाचा कह रहे हैं 5 घंटे, और भाई जी 12 घंटे, ये पहली जमीन मुझे मिली जहाँ के लोग 12 घंटे कह रहे हैं, हमने तुर्की में तो देखा 12 घंटे वाले, मैंने मतलब कहीं दुनिया में नहीं देखा 12 घंटे, तुर्की में हमने देखा लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, वरना जनरली कितने घंटे करते हैं भाई, ज्यादातर कितने घंटे करते हैं, चलो अपने 8 और 12 के बीच में 10 घंटे कर लो, ठीक 10 घंटे कारोबार के आराम कितने घंटे करते हो, 6 घंटे, चलो 8 घंटे कर लो, कितने हो गए 18, 10 और 8, 24 कलाक में से 18 निकाल दो, कितने घंटे बचे 6, ये 6 घंटे कहां देते हम, ये खबर नहीं कहां देते हैं, मैं बताऊं कहां देते हैं, मैं बताऊं, चाय पीने दोस्त के साथ दे, चाय पीते पीते आधा घंटा, अखबार पढ़ने बैठे, अखबार पढ़ते पढ़ते आधा घंटा, दोस्त मिल गया उसे गपशप करने बैठ गए आधा घंटा, घर में 10-10 मिनट में खाना होता है, घर वालों के साथ बैठ गए गपशप में तो दोपहर का खाना आधा घंटा, शाम का खाना आधा घंटा, ऐसे गपशपों में हमारे 6-8 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं, बोलो चले जाते हैं नहीं चले जाते हैं, हमारे फरमाते हैं तुम सबसे पहले अल्लाह के हो, हम अपनी अम्मी के भी बाद में, बच्चों के भी बाद में, बीवी के भी बाद में, सबसे पहले किसके हैं बोलो, अल्लाह के, उसके बाद नबी के हैं, फिर अपने माँ बाप के हैं, सबके बाद में। हमारे नबी का हक ये है कि हम उनके उम्मत की फिक्र करें। अल्लाह के नबी सल्लम ने हज्जतुल वदा में ये कहा कि देखो मैंने तुमको दीन पहुंचाया नहीं पहुंचाया, सबने कहा पहुंचा दिया, फिर हमारे नबी ने फरमाया मैंने जो बातें तुमको पहुंचाई तुम अपने बाद वालों को पहुंचाना। तो हमको पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर गए हैं, कल कयामत के दिन उनको हमें चेहरा दिखाना है। अगर उसकी उम्मत की हमने फिक्र नहीं की होगी कैसे चेहरा दिखाएंगे? हम अपने बाप के बाद अपने औलाद की फिक्र करते हैं, अपने भाइयों की फिक्र करते हैं, रिश्तेदारों की करते हैं, हम नबी की उम्मत की अगर फिक्र नहीं की तो कल कयामत के दिन नबी को क्या चेहरा दिखाएंगे? ये नबी की उम्मत तो देखो कैसे कैसे हालात में है। सुबह हम दोनों के जमातों की कारदारी सुन रहे थे, जमात पैदल जाकर आई, वो कारदारी सुना रही थी ऐसे ऐसे गाँवों में जहाँ मस्जिद भी नहीं है, मदरसा भी नहीं है, यूं धक्का लगाओ तो मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, इस हाल में वो खड़े हुए हैं, उनकी कौन फिक्र करेगा? तो उसकी फिक्र हमें करनी है। साहबा 1,25,000 थे हमारे नबी के साथ हज में, 1,25,000। ये जब फिर जिम्मेदारी उनको दी तो इसी काम काज में रहते हुए उन्होंने जिम्मेदारी पूरी की और दुनिया में जाकर फैल गए। 1,25,000 साहबा 10,000 से 12,000 की कब्रें मक्के मदीना में हैं, वरना तो उनकी कब्रें पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में, कहाँ कहाँ। हम लोग टर्की गए इस्तांबुल में, 4,000 किलोमीटर है सऊदीया से, वहां भी उनकी कब्रें देखे। अरे भाई वहां तो प्लेन नहीं था कैसे पहुंच गए, लेकिन वहां भी पहुंच गए, प्लेन नहीं है कैसे पहुंच गए, 4,000 किलोमीटर साला की कब्र। अब वो बंसर की कब्र वहाँ है, अकाब इब्न मालिक की कब्र वहाँ है, हम लोग जॉर्डन में, जॉर्डन में देखा हजरत अबू हुरैरा वहाँ है और मुआद इब्न जबल वहाँ है, पता नहीं कौन कौन कहाँ सोए। हम लोग जजरतुल कमर गए, कॉमरस गए तो वहाँ देखा पहाड़ पर सारी की कब्र है, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ दुनिया में फैले हुए। यूरोप में, यूरोप में उनकी कब्र है, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, वो भी हमारे तरह बीवी बच्चों वाले थे। इनको किसने फिराया? क्या एहसास से जिम्मेदारी ने फिराया? हम भी अल्लाह के नबी मर कर अल्लाह के पास जाना है, इस कब्र में सो, इस मिट्टी में सो जाएंगे, कोई रणी धनी नहीं होगा। देखो हम अपने माँ बाप के साथ रह रहे थे, हम में से किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, कौन उसको याद करता है, हमें कौन याद करेगा? कल कयामत के दिन एक सिफारिश होगा, वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सिफारिश होंगे, वो जाने को सर दिलाएंगे, उन्हीं के हाथ हाथ मुझे उनके हाथ में झंडा होगा। अगर उनकी उम्र का काम क्या होगा तो उनकी आंखें ठंडी हो जाएगी, अपने हाथ से जाने को सर पिला देंगे और अपने झंडे के नीचे जगह में मिल जाएगी। इसलिए अपने नबी का करीब बने, जिसका काम करते हैं उसको पसंद आ जाओगे, अल्लाह का काम करोगे, नबी का काम करोगे उसको पसंद आ जाओगे। इसलिए तबलीग के काम को सवाब की खाली चीज़ न समझो, ये जिम्मेदारी की चीज़ है कि हम जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदारी समझ कर मोहल्ले वालों की फिक्र करो। क्या फिक्र करो? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं रोजाना अपने वक्त में से 2.5 घंटे दो, कितने घंटे बोलो, 2.5 घंटे अपने मस्जिद वालों से कहो कि हम भी तुम्हारे साथ मेहनत में आएंगे। उसमें क्या करो, ऐसी मेहनत करो मोहल्ले में कि जो तुम्हें फिक्र मिली है वो फिक्र मोहल्ले के हर घर में पहुंच जाए। इसके लिए क्या करो कि जितने मकान हो उनका तकसीम करो कि भाई हम 12 आदमी मस्जिद में हैं, 200 मकान है, भाई ये 3 आदमियों की एक जमात, ये दूसरे 3 आदमियों की, चौथे 3 आदमी, 4 जमातें बन गए, ये 50 मकान तुम्हारे भाग में, ये 50 तुम्हारे भाग में, ये 50 तुम्हारे भाग में, 50 तुम्हारे भाग में। और रोजाना हम मुलाकातों का निजाम बनाओ, हर घर पर जाकर ईमान वालों से बात करो, 12 घंटा कम से कम, 15-20 मिनट, 1/2 घंटा घर में बैठ कर बात करो, उसमें ऐसी मेहनत करो। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हर 15 दिन में 100% मुलाकातें पूरी कर लो, कितने टका बोलो, 100% मोहल्ले वालों से मुलाकात हर 15 दिन में करो। क्यों? ये 15 दिन में अगर ईमान वाले से नहीं मिले तो बेचारा ये ईमान वाला 15 दिन से पता नहीं क्या क्या बातें सुनता है, इसका दिमाग सड़ जाएगा ये बातें सुन सुनकर। कम से कम उसको 15 दिन में एक मरतबा तो अल्लाह रसूल की बात सुनाओ। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हर 15 दिन में मुलाकात करो, और कैसे करो? तो हमारे बुजुर्ग फरमाते बाजार में नहीं, रास्तों में नहीं, घर में बैठ कर बात करो। भाई घर में बैठ कर क्यों बात करें? इसलिए घर में बैठकर बात करो कि अगर आपने उस घर के एक आदमी से बाजार में मुलाकात कर ली, वो घर का एक आदमी है, हो सकता है वो तुम्हारी बात घर में लेकर नकल न कर सके, तुम उसके घर में बैठकर बात करोगे तो उस घर के 10 मेंबर है, 10 के 10 की सोच बदलेगी, फिक्रें बदलेगी, जो तुम बात सुनाना चाहते हो वो घर के सारे मेंबरों तक बात पहुंच जाएगी। बोलो पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी? अगर तुमने सब तक बात नहीं पहुंचाई और एक आदमी से बाहर बात कर ली, वो घर में जाकर कहने लगा मैं मस्जिद वाले आए थे और ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, अब घरवाली की भी सोच नहीं है, बीवी की भी नहीं है और बच्चों की भी नहीं है, उन्होंने रद्द कर दी, तो हमारा तो जीरो हो जाएगा। बोला होगा नहीं होगा? हम क्या करें? उससे कहें भाई हम घर में बैठकर बात करेंगे। जब घर में बैठकर बात करेंगे तो सारे मर्दों को बिठाओ बात करो, औरतों को क्या करेंगे? औरतों को नहीं कहना तुम भी आओ बात करो, सुनो हमारी, फितनों का जमाना है, बात करने सुनाना नहीं। पर औरत की फितरत कैसी होती है बताओ? औरत की आदत ये होती है जब घर में जाकर कोई बात करता है ना पराया आदमी, वो चुपके चुपके सुनती है कि हमारे मर्द से क्या बात कर रहा है, ये उसकी आदत होती है। बोलो ऐसी आदत होती है नहीं होती? वो चुपके चुपके सुनती है, वरना बातें भी सुनती है, बोलो क्या बातें कर रहा था, क्या क्यों आया था, तो ये उसकी फितरत में है, जब हम बात करेंगे ना तो उसके कान में भी हमारी बात पड़ जाएगी। तो घर में 10 मेंबर है तो 10 के 10 मेंबर हमारी बात ले लेंगे, तो उस घर में हमारी बात चलना आसान होगी। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हर घर पर जाकर मुलाकातें करो। तो कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी करीब जगह मिल जाएगी, अल्लाह के नबी सल्लम की वो फिक्र करेंगे ना उम्मत की, तो अल्लाह के नबी सल्लम हमारी फिक्र कर लेंगे। इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह हम अल्लाह के दिन को जरूर टाइम देंगे। भाई कौन कौन देगा तुम में से, कितना टाइम दोगे? देखो हमने तुम्हारे कारोबार का नहीं मांगा, हमने तुम्हारे आराम का नहीं मांगा, वो 6 कलाक जो वेस्ट जाते हैं उसमें से 2.5 कलाक। फिर ऐसा तो नहीं कहोगे कि हम बहुत बिजी हैं? अरे भाई ऐसा तो नहीं कहोगे, अल्लाह तौफीक दे। कितने काम हो गए ये, एक रोजाना का मशवरा, रोजाना के 2 तालीम और रोजाना का 2.5 घंटे। चौथा काम जो करना है वो 2 गश करने हैं। वो 2 गश कौन से करने हैं? एक अपने मोहल्ले का गश। अपने मोहल्ले का गश का क्या मतलब है? जो तुमने हर घर पर जाकर अलग अलग बातें की, अठवाड़िए में एक मरतबा पूरे मोहल्ले वालों को जमा करो, और जमा करके जो तुम बात चाहते हो वो सबको भेजे करके इज्तिमाई तौर पर बात करो। फिर क्यों भाई? जब तक मोहल्ले की कोई सोच इज्तिमाई नहीं बनती, मोहल्ले में वो काम आसान नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ, मोहल्ले के रास्ते टूट गए, तुमको तुम्हारी फिक्र है मोहल्ले के रोड अच्छे बनने चाहिए, पर मोहल्ले के दूसरे लोग तुम्हारे विरोध में होंगे, तो भाई मोहल्ले के रोड बन जाएंगे? अरे बोलो भाई बन जाएंगे। बिजली चली गई तो भाई मोहल्ले के सब लोग साथ मिलकर करें तो आसान होगा, या कुछ लोग करें तो आसान होगा? जरा जोर से बोलो, सब मिलकर करें। मोहल्ले का पानी चला गया, कुछ लोग उसकी कोशिश करें तो आसान होगा कि सब मिलकर करें तो आसान होगा? सब मिलकर करें। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम्हारी ये फिक्रों में पूरे मोहल्ले वालों को शरीक करो। इसके लिए क्या करो, हफ्ते में एक मरतबा गश्त का जो दिन तुम्हारी मस्जिद का है उसमें तुम इतने लोग साथ दे दो कि पूरे मोहल्ले में गश्त हो जाए, और सारे मोहल्ले वाले मस्जिद में आए और इतनी बड़ी जरूरत के बाद उनके साथ गश्त के बाद बात करो। इनको ऐसी फिक्र से बात करो कि हर मोहल्ले में से आने वालों को ये फिक्र लग जाए, अच्छा ये बात हमारी इतनी जरूरत की है, अगर हमारे मोहल्ले में ये नहीं हुई तो हमारा घर तो खराब हो जाएगा, हमारे मोहल्ले में खराबी आ जाएगी, तो उसके लिए हम सबको तैयार करें। इसको कहते हैं गश्त का अमल। ये किसने किया है? कि ये गश्त का अमल, लोगों को जमा करना, लोगों से बात करना, नबियों ने किया है। बोलो किसने किया है? अगर कोई आदमी चाहे कि सारे नबियों के उसके जरिए से सुन्नत जिंदा हो, उसको कौन सा अमल करना चाहिए? बोलो गश्त का अमल। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हफ्ते में एक दिन गश्त का अमल करो, गश्त का अमल, तो उससे अपने मोहल्ले की फिक्र होगी। हमने क्या फिक्र की? अपनी मस्जिद की फिक्र की, अपने घर की फिक्र की, फिर उसके बाद अपने मोहल्ले की फिक्र की। हो गए 3 काम, फिर हमारे अतराफ के मोहल्ले वो नहीं छूटने चाहिए, वरना अतराफ की बेदिनी हमारे वहां आएगी। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हफ्ते में एक मरतबा दूसरा गश्त करने अपने अतराफ के मोहल्ले में जाओ, अतराफ के मोहल्लों में गश्त करो। तो वहां भी बेदिनी है तो तुम अठवाड़िए में एक मरतबा गश्त करने वहां जाओ, वहां के मोहल्ले वालों को जमा करो, वहां भी यही दिन की बात करो। वो मोहल्ले में अल्लाह ये अमल जिंदा कर रहे हैं। ये 2 गश्त मिलकर एक अमल हुआ, एक अपने मोहल्ले की फिक्र करो, एक अपने अतराफ की। ये सारे काम कौन करता था? हमारे नहीं करते थे। हमारे नबी को अल्लाह ने हुक्म क्या दिया? कहीं नबी अपनी फिक्र करो, खूब अनफसकुम, फिर अपने घर वालों की करो, वह अहलीकुम नारा, हो गई, फिर अपने खानदान की करो, वंदी रशीदतक अल्लाह करबी खानदान की करो, फिर उसके बाद किसकी करो? तो मोहल्ले मक्के वालों की करो, वाले तो जरा उम्मल पुरा, नबी अपने मक्के की फिक्र करो, फिर किसकी फिक्र करो? क्या मक्के के अतराफ की करो, वमन हौला मक्के के अतराफ जितने लोग रहते हैं उनकी फिक्र करो। तो हमारे नबी मक्के के अतराफ में जमाते भेजते थे, इतनी जमाते हुजूर ने भेजी कि मक्के के अतराफ में जाल बिछा दी। इसलिए मक्के के अतराफ में जैसे मेहनत हुई, हमारे मोहल्ले के अतराफ में मेहनत करनी है। ये बिचार देखो भाई, जिसके पास खाना है वो भूखों को खिलाता है, जिसके पास पानी है प्यासों को पिलाए, जिसके पास दीन है वो उन पर मेहनत करे, जिनके पास दीन नहीं है हमारे अतराफ के मोहल्ले पुष्ट पड़े हुए हैं। अगर एक एक मस्जिद वाले के गाँव एक एक मस्जिद ले मेहनतने के लिए, तो एक साल में जितनी हमारी मस्जिदें मजबूत है वो कमजोर मोहल्ले वालों को मजबूत कर देंगे। इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हफ्ते में एक मतलब दूसरा गश्त करो। ये 2 गश्त हमें कर रहे हैं, करोगे इंशाल्लाह? कौन कौन नियत करता है करेंगे? कितने काम हो गए बोलो भाई? हमारी फिक्र हुई, हमारे घर की फिक्र हुई, हमारी मस्जिद की फिक्र हुई, हमारे मोहल्ले की हो गई, हमारे अतराफ के मोहल्ले की हो गई। फिर हमारे जिले की फिक्र कैसे करेंगे? हमारे जिले की फिक्र, हमारे जिले की फिक्र हम 3 दिन से करेंगे। कैसे करेंगे बोलो? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं फिर तुम्हारे जिले के गांवड़े जो है उसकी फिक्र कैसे करो? कि महीने के 3 दिन जमात बनाकर उन गांवों में जाओ, और गांवों में जाकर अपना वक्त लगाओ। पर उससे क्या फायदा होगा? तुम 1-3 दिन लगाओगे, 3 बड़े बड़े फायदे होंगे। बोलो कितने फायदे होंगे? अरे जरा जोर से बोलो भाई, 3। भाई क्या 3 बड़े बड़े फायदे होंगे? एक तो जो हमें चार्जिंग लेना था भाई, बैटरी लो हो जाती है उसको चार्ज करनी पड़ती है, जब हमारे 3 दिन लगेंगे तो सारी चार्ज हमें मिल जाएगी, हमारे अंदर फिर पावर आ जाएगा। जो हमारे चिल्ले में पावर आया था, 4 महीने में पावर आया था, वो पावर दोबारा आ जाएगा। ये 27 दिन घर रहकर जो धीमा पड़ गया उसको एक तो चार्जिंग मिल जाएगी, ये चार्ज हो जाएगा। दूसरा नफा क्या होगा? कि जो चीज हमारे फिक्रों में है हम अपने मोहल्ले वालों को देना चाहते हैं। जब यहाँ के हम 3 दिन जाएंगे ना तो हमारे मोहल्ले के 15 जवान छोकरे अपने साथ तशरीह करके ले जाएंगे। जब हमारे साथ वो 3 दिन आएंगे हमें मौका मिलेगा 3 दिन में उनको हुजूर वाला दीन दीन की मेहनत समझाने का मौका मिलेगा। ये 15 लोग कौन है? ये 15 लोग 15 आदमी नहीं, ये 15 खानदान 15 नस्लें 15 घराने हैं। अगर इन्होंने बात समझ ली अपने खानदानों को संभालने वाले बन जाएंगे, अपने नस्ल को संभालने वाले बन जाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा, तीसरा फायदा क्या होगा, जब हम किसी कमरे में जाएंगे ना वहां चैन से थोड़ी बैठेंगे, हम बैठेंगे भी नहीं, किसी को चैन से बैठने भी नहीं देंगे। वहां से 3 दिन की जमात बनाएंगे, नकद जमात बनाएंगे, मस्जिदा जमात बनाएंगे, मुसलमानों की मुलाकातें करेंगे, तो हम भी हरकत में आएंगे और सबको हरकत बनाएंगे। तो गांवों में जाने से ही नफा होता है, इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हर हर जिम्मेदार अपने साथ हर महीने में कितने दिन की जमात बनाए, बोलो 3 दिन की, अपने गांवों में जाए। लेकिन शैतान क्या करता है पता है, वो ये कोशिश करता है कि लोग जिसको जो करना हो करे पर 3 दिन न लगाए। क्या न लगाए बोलो, क्यों? ये 3 अपना अपना कर ले कोई वांधा नहीं, ये दूसरों की फिक्र नहीं करना चाहिए। क्यों? कि दूसरों की इसने फिक्र की जिसका नाम अमल बहुत बड़ा होगा। किताबों में लिखा है कि जो आदमी दूसरों पर भी दीन की मेहनत करता है मरने के बाद उनका रजिस्टर बंद नहीं होता, वरना जितने लोग हैं उनके सबके रजिस्टर बंद हो जाते हैं। एक सुबह लगा कि आदमी मोहताज हो जाएगा, पर दूसरों पर जो मेहनत करके गया है उसका क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? मैंने इस आदमी को किए मेहनत इस पर मेरा दफ्तर तो बंद हो गया, एक सुबह लगा कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनको मैं समझा कर लाया, इनको लाया। ये जितना करते रहेंगे वो मुझे इस सारे सवाब करें कि ना करें वो सब मेरे खाते में आएगा। क्यों? कि उनका जरिया मैं बना हूं, मेरे जरिए से आए हैं, तो मेरा दफ्तर बंद नहीं होगा, मेरा खाता चालू ही रहेगा। और कभी कोई हीरा जोरदार हाथ में लग गया ना वो दुनिया में हमसे ज्यादा काम करेगा और हम कमा कर देंगे। देखो हजरत उमर जैसे आदमी, इतने बड़े आदमी के 3 बड़े आजमों पर 3 खंड पर उनकी हुकूमत, इतना बड़ा आदमी किसकी मेहनत से आया? कि इनके लिए उनके बहन ने मेहनत की थी। आपने फजलनामा में पढ़ा होगा बहन को तमाचे मारे थे तो तमाचे बहन ने खाए, लेकिन बहन के तमाचे खाने पर अल्लाह ने इतना जोरदार हीरा दे दिया। हजरत उमर जैसे आदमी उनकी मेहनत से आए। अब इन्होंने दुनिया में जितना काम किया कल कयामत के दिन किसके नामे अमल में जाएंगे? अरे बोलो किसके नामे अमल में? जिसने उन पर मेहनत की उसके नामे अमल। ऐसे हीरे हमको मिल गए, हमारा काम हो जाएगा काम, इसलिए हम इस मेहनत करने को मामूली ना समझे, हमारा काम हो जाएगा जोरदार। वो दुनिया में काम करते रहेंगे, हम तो कब्र से चले जाएंगे, वो काम करेंगे और हम मजे करेंगे। इसलिए शैतान क्या करता है, ये जो करे करे, लेकिन 3 दिन नहीं लगाना चाहिए, 2.5 घंटे नहीं लगाना चाहिए, पब्लिक पर मेहनत नहीं करना चाहिए, हाँ, ताकि ये ठंडा हो जाएगा तो सारे काम होंगे ही नहीं, तो न रहे बांस और न बजे बांसुड़ी। हमें क्या करना है, हमें बांस लाना है, हमें बांस लाना है, बांसुड़ी बनानी है और पूरी दुनिया में बांसुड़ी बजानी है। पूरी दुनिया में बोलो बांसुड़ी बजानी है। ऐसा काम करके जाना है कि करते करते मरना है। कैसे मरना है बोलो? करते करते मरना है और मरते मरते हम अकेले नहीं उठेंगे कयामत के दिन। तो भाई कैसे उठोगे? हम तो टोले के टोले लेकर उठेंगे। बोलो कैसे उठेंगे बोलो? अरे बोलो जरा, टोले के टोले लेकर उठेंगे, हम अकेले नहीं उठेंगे। जब हमारी जनाजा चलेगा ना तो लोग रोते होंगे, हम हंसते होंगे, अल्लाह भी खुश हो जाए और अल्लाह फरिश्तों को लेने भेज दे कि आ जाओ, तुम बहुत थके हो, तुमने बहुत चिल्ले लगाए हैं, तुमने बहुत चाचा मिलने लगाए हैं, तुमने बहुत गश्त किए हैं, तुमने लोगों की बहुत मार खाई है, तो अल्लाह 500 फरिश्ते आसमान से भेजेंगे। कितने बोलो? हर फरिश्ते के हाथ में गुलदस्ता होगा और जब हमारा जनाजा चलेगा ना तो हर फरिश्ता ही लाइन लगा कर खड़े हो जाएंगे और फरिश्ते सुनाएंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ओ थकी मंदी रूह, तूने बहुत थकन उठाई है, बहुत थका है, अब तो चल, तेरा अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा है। हम वो मंजर देखेंगे तो हम फरिश्तों से कहेंगे अज्जिलूनी अज्जिलूनी, अरे भाई क्यों मना करते हो, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, मजे आएंगे मजे। यहाँ के मजे कोई मजे नहीं, असल मजे मरने के बाद के हैं। तो जब ये तैयारी होगी तो मरने में मजा आएगा। अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक ब्रिज है बीच में, बस ये ब्रिज पार किया हमारा अल्लाह में मिल जाएगा। बोलो कब मिल जाएगा? हमारा अल्लाह हमें मिल जाएगा, उस अल्लाह के पास हमें मजे करके जाना है, इसलिए ये काम करके जाना है। तो सब नियत करो कि हम भी इंशाल्लाह अकेले नहीं मरेंगे, लोगों को कमा कर मरेंगे। मौलाना उमर साहब कहते थे हम बांझ नहीं मरेंगे। अरे भाई बांझ किसको कहते हैं? तो ऐसी औरत जिसको आदत नहीं हुई, अकेले थी और मर गई, अकेले थी और अकेली मर गई, मर गया मर्दूद न फातिहा न दरूद पूरा हुआ, तो हम कैसे मरेंगे? हम अकेले नहीं मरेंगे, हम हजारों रोने वाले छोड़कर मरेंगे, हजारे आंसू बहाने वाले छोड़कर मरेंगे, हमारा खैरखा चला गया, हमारा हमदर्द चला गया, हमारे लिए दुआएं करने वाला चला गया, हमारे पीछे पेश करने वाला हमारा एक एक, एक आदमी मरता है तो घर में आंसू बहते हैं। ऐसा जीना है कि हजारों घरों में हमारे नाम के आंसू बहे, ऐसा जीना। अभी हम लोग रायगढ़ में गए थे गुजिश्ता, तो जिन्हें जमशेद का इंतकाल हो गया था रहमतुल्लाह अलैह, तो ऐसे हम तुम्हारी तारीख में कहने लगे कि उस आदमी का क्या जनाजा उठा, और ऐसा कि सारे घर लोग रोते थे, सब लोग रोते थे, इतने रोते थे कि वो कहने लगे 35 एकड़ जमीन पर नमाज जनाजा हुई। कितनी जमीन पर बोलो? 35 एकड़ जमीन पर नमाज जनाजा। वो कहते थे ऐसा जनाजा मैंने नहीं देखा। वो तो बहुत बाद में आए तबलीग में, वरना वो तो स्टेज पर डांस करते थे, लेकिन ऐसा लोगों का दिल जीत कर गए कि हजारों लोगों को रोने वाला छोड़ कर गए। आज भी लोग उनको इस सवाब करते हैं, छोकरा दावा को नहीं करता लेकिन उनको हजारों लोग करते होंगे, तो हम अपने पीछे हजारों इसारे सवाब करने वाले छोड़ कर मरेंगे। इसलिए सब करो कि इंशाल्लाह हम भी बांझ नहीं मरेंगे, लोगों को कमा कर इंशाल्लाह मरेंगे। भाई सब नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है? अल्लाह तौफीक दे अल्लाह। अब एक बात आखिरी में आपसे कर रहा हूँ, वो क्या कह रहा हूँ, जब आपने नियत की, नियत अमल का इमाम होती है। किसका अमल? भाई एक आदमी नियत ना करे वो अमल उसका बेकार हो जाए। एक आदमी सुबह से शाम तक भूखा रहे लेकिन रोजे की नियत नहीं करे, रोजा होगा? एक आदमी बैतुल्लाह गया लेकिन उसकी नियत नहीं की, रोजा होगा? एक आदमी ने उठक बैठक पूरी की, रुकू सजदा सब किया लेकिन रुकू नमाज की नियत नहीं की, उसकी नमाज होगी क्या? नहीं होगी। तो नियत पर सब चीजें होती है, तो इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तुमने बात सुनी है तो नियत कर लो कि इंशाल्लाह हम ये काम सब करेंगे। शैतान क्या करेगा? इनको नियत न कराओ, ताकि नियत न करे तो काम भी इनका ना हो। तो आज सब नियत कर लो कि हम सब आज नियत करके जाते हैं कि हम ये काम करेंगे। सब नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है? क्या काम कर रहे हैं? पहला काम रोजाना मशवरे में बैठना, दूसरा काम मस्जिद और घर की तालीम, तीसरा काम रोजाना 2.5 घंटे, चौथा काम हफ्ते के 2 घंटे, पांचवा काम महीने के 3 दिन। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं? हर हल्के वालों को हम बिठाएंगे कि भाई अपने थोड़ी देर बैठो 5-10 मिनट और अपनी नियत बताओ, कब 2.5 घंटे दोगे, कब तालीम करोगे, कब 3 दिन जाओगे, वो जरा अपने मस्जिद वालों को बता दो, फिर आपकी छुट्टी है। अभी देखो बहुत टाइम बाकी है, तो हम एक एक बस्ती वालों को खड़ा करेंगे, उसके अलावा कोई ना उठे। शैतान क्या करेगा? 5 मिनट सबर नहीं करने देगा, क्योंकि अगर इसमें नियत की ये काम वाला भी बन जाएगा, तो इसको नियत ही नहीं करने देनी, इसकी बुनियाद नहीं पड़ने देनी, ताकि ये काम का भी न बने। तो सब नियत करो, इंशाल्लाह नियत करके जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा भाई एक एक बस्ती के लोग खड़े हो जाओ, महुआ हल्का थोड़ा खड़ा हो जाए, महुआ के जितने लोग आए वो सब खड़े हो जाए, महुआ और महुआ से जुड़े हुए लोग जितने जहाँ के हैं जरा खड़े हो जाओ। चलो आप यहाँ बीच में चले जाओ, वहाँ बीच में चले जाओ, और सारे मस्जिद के सतह पर बैठो और ये नियत कर लो।